आज जो सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं वो है मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार, और हम बात करेंगे आज जनसंपर्क के उपकरणों के बारे में। और इस जानकारी को विस्तृत रूप से हमें बताने के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
धन्यवाद। मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ और हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 20 की, जिसका नाम है जनसंपर्क उपकरण। तो शिक्षार्थियों, जब हम लोग जनसंपर्क की बात कर रहे हैं तो जनसंपर्क भारतवर्ष जैसे बड़े राष्ट्र में तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम इतने बड़े जनमानस को एक साथ संबोधित करने का प्रयास करते हैं, और जब संबोधित करने का प्रयास करते हैं तो जो राष्ट्र की विचारधारा है, जो राष्ट्र की नीतियां हैं, उनका अमल करने की भी हम अपेक्षा अपनी आम जनता से करते हैं। लेकिन जब हम लोग यह अनुरोध जनता के संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से हमको प्रभावी तरीके से संप्रेषण को करने के लिए अपने आप को सशक्त करना पड़ता है। अब वो प्रभावी तरीके संप्रेषण के कौन से होते हैं, उनका भी अध्ययन हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। तो शिक्षार्थियों, सबसे पहले हम लोग ये जानने कि क्या कभी आपने विशेषज्ञों के द्वारा कोई वक्तव्य सुना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद कीजिए। आपके दैनिक समाचार पत्र के साथ वितरण होने वाला एक छोटा सा जो पैम्फलेट आता है, कागज़ का पन्ना आता है, क्या आपने कभी उसको ध्यानपूर्वक देखा है? अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ आपने कई बार बहुत सारे विज्ञापन सुने होंगे रेडियो और टेलीविज़न के ऊपर में, एक उत्पाद विशेष के बारे में सूचना देने के लिए सड़क के किनारे एक विशाल डिस्प्ले बोर्ड भी देखा होगा। आप रोज़ाना अपनी कार में, अपनी बाइक में, अपने स्कूटर में जाते हैं तो उसको भी देखते हैं आप। तो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की जो सूचनाएं दी जाती हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अनेक प्रकार के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाता है जिससे कि उनकी बिक्री को बढ़ाया जा सके, तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं जनसंपर्क की। लेकिन जनसंपर्क में प्रयुक्त होने वाले कुछ फॉर्मेट हैं, उनकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करें। जैसे एक उदाहरण हमने अभी दिया भी था आपको, इनमें से कुछ हैं जैसे मौखिक संप्रेषण है, मुद्रित शब्द हैं, प्रसारण के संदेश हैं, प्रदर्शनी हैं। अब आप लोग प्रदर्शनी गए होंगे, कई बार दिल्ली में प्रगति मैदान में लगती है, या आपके शहरों में भी आप किसी प्रदर्शनी, किसी एग्जीबिशन में गए जरूर होंगे। तो उन प्रदर्शनियों के माध्यम से भी हम देखते हैं कि जनसंपर्क की बात को बढ़ाया जाता है, जनसंपर्क के उपकरण के तौर पर इन प्रदर्शनियों का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो जनसंपर्क को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं वो कौन कौन से हैं, और कैसे आप इन उपकरणों के माध्यम से जनसंपर्क की प्रक्रिया को और सक्षम बनाते हुए अपने संप्रेषण को आगे बढ़ाते हैं और एक विशाल जनमानस तक अपनी बात को सशक्त तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से इस पाठ को पढ़ने के बाद, प्यारे शिक्षार्थियों, आप जान पाएंगे कि जनसंपर्क के जो उपकरण हैं उनके अर्थ क्या हैं और उनकी व्याख्या करना आप सीख जाएंगे। विभिन्न प्रकार के जो जनसंपर्क के उपकरण हैं उनकी पहचान करना सीख जाएंगे। मौखिक संप्रेषण का क्या अर्थ है उसका भी वर्णन करना आप सीख जाएंगे। साथ ही साथ जो मुद्रित संप्रेषण के विभिन्न रूप हैं उनका वर्गीकरण भी हम आज जानने का प्रयास करेंगे, और जनसंपर्क के उपकरण के तौर पर मुद्रित तथा प्रसारण माध्यमों का महत्व क्या होता है इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे, और साथ ही साथ आउटडोर माध्यम के विभिन्न रूपों की सूची बनाना, जनसंपर्क में माध्यमों के अनुरूप का महत्व बताना भी हम लोग इस कार्यक्रम के दौरान सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, प्यारे शिक्षार्थियों, जनसंपर्क के उपकरणों के बारे में। और हमने देखा भी है कि जनसंपर्क का एक जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मुख्य एम है, वो क्या होता है प्यारे शिक्षार्थियों? वो होता है लोगों का ध्यान आकर्षण करना, विश्वास जीतना, आपसी समझ को विकसित करना, सद्भाव अर्जित करना। अब अगर ये गुण आपके अंदर हैं, आप इन सब गुणों का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, या अपने व्यावसायिक जीवन में करते हैं, या अपनी कुशलताओं के साथ इनको प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे पीआर के गुण आपके अंदर में हैं। पीआर का मतलब है जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन। तो अब हम इन जब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जनसंपर्क की प्रक्रिया में कोई संदेश एक विशिष्ट ऑडियंस के लक्ष्य को प्रयोग में ला करके आगे बढ़ता है। इसका मतलब है कि एक सीधा सा उदाहरण हम लोग ले लें, कि आपकी प्रधानाचार्या जब परीक्षाओं से पहले आपको संबोधित करती थी और आपको आशीर्वाद प्रदान करती थी, आपके लिए शुभकामनाएं देती थी और आपको बताती थी कि बड़े आत्मविश्वास के साथ आप अपनी परीक्षाओं में सम्मिलित होइए, इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आपने वर्ष भर जो भी अध्ययन किया है उसको एक बार रिवाइज करके आप बैठिए, निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो इस उदाहरण में क्या होता है कि प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया वक्तव्य छात्रों को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। तो ये एक प्रकार की जनसंपर्क की घटना हो गई कि हमने एक प्रधानाचार्य के माध्यम से किसी विद्यालय के समस्त शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। और इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने राष्ट्र को साफ स्वच्छ रखने की बात करते हैं, तो हम उनकी बातों का अनुकरण करते हुए इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाते हैं, अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। और जिस प्रकार से हमारा कूड़ा है उसके निस्तारण की जो भी विधियाँ हमारे शहर में, हमारे गाँव में बताई गई हैं उनका अनुपालन करते हैं, तो निश्चित रूप से इन वक्तव्यों का अनुकरण करते हुए अगर हम कोई काम करने में सक्षम होते हैं, तो इसका मतलब है जिसके द्वारा ये वक्तव्य दिया गया है, ये संदेश दिया गया है, वो एक अच्छा जनसंपर्क का वक्ता है, ज्ञाता है और उसका सही से वो प्रयोग कर रहा है। तो अब हम लोग कई बार ये भी देखते हैं कि जनसंपर्क का प्रयोग करने के लिए वेबसाइट भी एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन होती हैं। आप चाहे तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की वेबसाइट की ही यहाँ बात कर लें। अगर आज आपको NIOS की कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले आप www.nios.ac.in पर जाकर के उस सूचना को खोजते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारी जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं सफलतापूर्वक, उनकी भी कोई जानकारी आपको चाहिए थी, आपको डेट शीट देखनी थी, अपना सेंटर देखना था, तो उनको भी देखने के लिए आप हमारे संस्थान की वेबसाइट पे जाते हैं। तो कई बार ये वेबसाइट भी एक प्रकार से जनसंपर्क के उपकरण के तौर पर आप देखते हैं, PR टूल्स के रूप में आप देखते हैं, जिसके साथ ही आप देखते हैं कि बहुत सारे संदेश आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो क्यों ना क्यों हम लोग देखें कि किस प्रकार से जनता में संप्रेषित करने के लिए कुछ प्रयुक्त जो जनसंपर्क के उपकरण हैं उनकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पे करें। जैसे कि मौखिक संप्रेषण है, मुद्रित तथा ग्राफिक संप्रेषण है, मुद्रित माध्यम है, आउटडोर माध्यम है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड देखते हैं, होर्डिंग देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, साथ ही साथ प्रसारण के अन्य माध्यम है जैसे रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा है, उनके माध्यम से कई बार बहुत सारा जनसंपर्क होता है। और साथ ही साथ कुछ अन्य माध्यम भी है, जैसे कि हमने वेबसाइट की बात की थी, हमने प्रदर्शनी या एग्जीबिशन की बात की थी, हमने एंडोर्समेंट की बात की थी। अब एंडोर्समेंट में आप देखते हैं कि कई कई बार आपके जो प्रमुख सितारे हैं वो आपके लिए कोई संदेश लेके आते हैं। मान लीजिए आप पल्स पोलियो अभियान की बात करें, उसमें देखें कि अमिताभ बच्चन जी आपको कुछ संदेश देते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि भारतवर्ष को अगर पल्स पोलियो से मुक्त करना है तो आपको पल्स पोलियो अभियान में भागीदारी दिखाते हुए 2 बूंद जिंदगी की लेनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग COVID-19 से जूझ रहे हैं, तो माननीय मोदी जी का भी कहना है कि आप लोग धैर्य रखें, हमारे पास वैक्सीन है, वो एक चरणबद्ध तरीके से आपके बीच में आ रही है। सबसे पहले ये हमारे चिकित्सा कर्मियों को दी गई है, डॉक्टरों को दी गई है, दूसरे स्तर पर ये हमारे सुरक्षा कर्मियों को दी गई है, तीसरे स्तर पर ये वयोवृद्ध लोगों को दी गई है, और धीरे धीरे समस्त जनता के लिए ये COVID-19 की वैक्सीन समस्त लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो प्यारे शिक्षार्थी, हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे बातें की हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि किस प्रकार से मौखिक संप्रेषण को हम लोग जनसंपर्क के एक उपकरण के तौर में प्रयोग में लाते हैं। तो आप एक छोटा सा संस्मरण यहाँ पे कीजिए, एक याद कीजिए कि किस प्रकार से आप कोई अंतर व्यक्तिक संप्रेषण के विषय पे अपने पहले मॉड्यूल में जब सीख रहे थे तो हमने ये जान लिया था कि यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। मतलब जो संचार है, संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। अब द्विमार्गीय प्रक्रिया है तो इसका मतलब है कि संचार में संचारक जो है, मतलब जो संदेश देने वाला है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसके लिए संदेश बनाया गया है, जो प्रापक है, जो रिसीवर है, जहाँ तक संदेश जा रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने किस प्रकार से उस संदेश को ग्रहण किया है और उसकी प्रतिपुष्टि की है, यानी उसका फीडबैक दिया है। अगर आपने कोई संदेश दिया है, उसकी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए संचार में कोई ना कोई बाधा जरूर है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, हम लोग देखते हैं कि कई के बार कक्षा में आपकी अध्यापिका भी आपसे बहुत सारा संवाद करती हैं, बातचीत करती हैं। कई के बार वो आपको डांटती भी हैं कि आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। और कई के बार आप देखते हैं कि उसके द्वारा कहे गए शब्दों को आप सही से लेते हैं और अगली बार जो परीक्षाएं आती हैं तो आप उसमें अच्छा कर जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मौखिक जो संप्रेषण है, उसको जनसंपर्क के एक उपकरण के तौर पे जब हम प्रयोग में लाते हैं तो उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी अध्यापिका जो भी आपको कहती हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ प्यारे शिक्षार्थियों कि यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। अब मैं यहाँ पे रूपा मैम से जानना चाहूँगा कि जैसे हम लोग ये मुक्त विद्यावाणी का कार्यक्रम करते हैं मैम,
जी सर,
तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि NIOS के जो भी पंजीकृत शिक्षार्थी हैं उनको जो भी आप संदेश देती हैं वो ग्रहण करें, और साथ ही साथ कई बार आप अनुरोध भी करती हैं कि श्रोतागण अगर कोई हमसे बातचीत करना चाहते हैं
जी
तो हमारे टोल फ्री नंबर पर या हमारे लैंडलाइन नंबर पर वो कॉल भी करें। तो वो क्यों कहती हैं रूपा जी? रूपा जी इसलिए कहती हैं क्योंकि वो आपका फीडबैक भी चाहती हैं
जी
कि जिस प्रकार हम लोग पाठ दर पाठ आपके लिए मुक्त विद्यावाणी के कार्यक्रम लेकर आते हैं तो क्या वो सही से आप तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। उन पाठों के दौरान आपको जो भी बातें यहाँ से कही जा रही हैं, जिनको कि आप YouTube पर भी सुन पाते हैं, संस्थान की वेबसाइट पर भी सुन पाते हैं,
जी
क्या वो प्रभावी ढंग से आपके लिए सक्षम हो पाते हैं? तो रूपा मैम, कभी कोई आपके मन में एक उदाहरण आया कि किसी बच्चे ने फ़ोन किया हो, बताया हो कि हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं या
जी
फिर उनमें कोई गुणात्मक सुधार की आवश्यकता हो, कृपया हमें बताएं।
सर, बिल्कुल हमारे पास कॉल्स आते हैं, कह सकते हैं कंटिन्यूअसली तो नहीं आते, लेकिन बहुत से टाइम फ़ोन आते हैं और स्टूडेंट हमसे पूछते भी हैं कि मैम हम कैसे सुन सकते हैं या कैसे, तो हम उनको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि
जी
वो किस तरीके से पेज को ऑन करें और कहाँ पर जाके वो ये प्रोग्राम सुन सकते हैं, कहाँ पर शेड्यूल अपलोड है, उनको पूरी जानकारी देते हैं। और ये भी साथ में कहते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, आप उनसे आके उनसे पूछिए, और अगर आपके तब भी समझ में ना आए तो आप उसको दोबारा पूछिए, बार बार हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं।
जी
साथ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड, हम अपने प्रोग्राम्स में ये भी साथ में कहते हैं कि अगर जैसे कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है तो जरा हम ये भी उनको सूचना देते हैं कि आप किसी और जानकारी के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को TMA से लेके एडमिशन प्रोसेस से लेके फीस तक सब कुछ जानना होता है,
जी
तो और वो हर जगह जाना संभव नहीं होता, तो फोन कॉल्स एक ऐसा माध्यम होते हैं कि वो हमसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं।
तो रूपा जी सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है कि
जी
जब भी हम जनसंपर्क के उपकरण के तौर पर मौखिक संप्रेषण करते हैं
जी
तो वहाँ स्पष्टीकरण की संभावना बढ़ जाती है,
बिल्कुल सर,
क्लैरिफिकेशन की संभावना बढ़
बिल्कुल
जाती है,
जी
क्लैरिटी बढ़ जाती है।
जी
अगर एक शिक्षार्थी के मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी संशय है, कोई भी उसको अलग जानकारी चाहिए तो वो तुरंत के तुरंत मौखिक संचार के माध्यम से हमसे प्राप्त कर सकता है।
बिल्कुल
और एक जनसंपर्क के उपकरण के तौर पर हम लोग इसको कहते हैं कि मौखिक संचार का प्रयोग भी हम लोग PR टूल्स के रूप में
कर सकते
कर
हैं।
सकते हैं।
जी
तो रूपा जी, आगे हम लोग अपनी बात बढ़ाते हैं, देखते हैं कई बार हम लोग देखते हैं कि नेताजी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं, वो हमारे मोहल्ले में आकर भाषण देते हैं, भेंट
जी
वार्ताएं करते हैं।
जी
अभी देखिए हम लोग की कई राज्यों में चुनाव भी चल रहा है, तो वहां पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और विशाल गोष्ठियां हो रही हैं, विशाल जनसभाएं हो रही हैं। तो क्या कभी आपने कैसे शिक्षार्थियों देखा होगा कि टेलीविजन पे भी बहुत सारी ऐसी चर्चाएं आजकल होने लगी हैं, न्यू मीडिया पर भी उसको यूज करके बहुत सारे लोगों को संबोधित किया
जी
जा रहा
सर,
है। तो यह भाषण भी एक मौखिक संप्रेषण का प्राथमिक रूप है,
जी
और भाषण को प्रभावी ढंग से प्रसारण करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए वक्ता को चाहिए कि उसके पास अच्छे शब्द हों, अच्छे वाक्य विन्यास हों, हों अच्छी तरीके से वो संदेशों को पहुंचाए, और जिसके लिए वो कही जा रही है क्योंकि वो उसके समक्ष ही बैठा है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। और तो और सबसे अच्छा यह है कि एक माहौल बनता है जब हम भाषण के लिए कहीं उपस्थित होते हैं। तो आज भी आपने देखा होगा रूपा मैडम कि हम लोग भेंट वार्ता जो शब्द है जिसको आप लोग कई बार बोलती हैं, भेंट वार्ता शब्द के माध्यम से विशाल जन समूह को हम लोग संबोधित कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उनका रुझान अपनी ओर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो रेडियो का प्रयोग करके, टेलीविजन का प्रयोग करके, या फेस टू फेस भाषण के रूप में जो हम ये काम करते हैं, ये भी जनसंपर्क का ही एक उपकरण होता है रूपा मैम।
हाँ जी सर।
तो अब आपको मैं एक बात यहाँ पे कहूँ कि जिस प्रकार से आपने अपनी जॉब के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, तो उस इंटरव्यू का भी कुछ यहाँ पे हमें संस्मरण बताएं कि किस प्रकार से जब आप इंटरव्यू देने पहुँचती हैं तो जिस संस्थान के लिए इंटरव्यू दे रही हैं उसको और अधिक जानने समझने का आपको मौका उसी समय मिलता है जब आप इंटरव्यू दे रही होती हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं।
हाँ सर बिल्कुल, मैंने बहुत सी जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं और मैं जाती भी हूँ। तो हमें क्या होता है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते, लेकिन हम जब वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना, या उस ऑर्गेनाइजेशन को जानना, उस कंपनी को जानना। तो हम वहाँ जाने के बाद वहाँ के वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उसे भी एक सर जनसंपर्क का ही टूल्स हम कह सकते हैं, उपकरण कह सकते हैं, क्योंकि हम एक इंसान से पूछते हैं जो वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं कि मैम यहाँ पे ये प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, क्या वर्क आवर्स होते हैं, क्या काम करने का क्राइटेरिया होता है,
जी
ये सब हम वहाँ जानते हैं, ताकि अगर इंटरव्यू हमसे ये सब चीज़ें पूछें तो हम उसको इस बात का जवाब दे पाएँ।
तो शिक्षार्थियों आपने ये समझ लिया है कि जब हम लोग साक्षात्कार देते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा उसका उत्तर देता है। पहले को हम लोग साक्षात्कारकर्ता कहते हैं, दूसरे को साक्षात्कारदाता कहते हैं, मतलब इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी। इस विधि में हम देखते हैं कि साक्षात्कारदाता के पास श्रोताओं यानी कि ऑडियंस को प्रभावित करने के बहुत सारे अवसर होते हैं। दाता मतलब जो आप दे रहे हो, जो इंटरव्यूवी है, ठीक है। आप प्रभावित करने के कैसे अवसर होते हैं, क्योंकि आप अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को बता सकते हैं, अपनी योग्यताओं को बढ़ाकर बता सकते हैं, अपनी दक्षताओं का वहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं, कुशलताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस भेंट वार्ता को भी हम कहेंगे कि इसको भी हम लोग जनसंपर्क का एक उपकरण मानेंगे, और निश्चित रूप से शिक्षार्थियों पूरे जीवन पर्यंत ये जो भेंट वार्ता शब्द मैं आपको कह रहा हूँ, इंटरव्यू कह रहा हूँ, ये पूरे जीवन भर आपके समक्ष रहेगा। आप जैसे आप तो इंटरव्यू का तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, जो हम परीक्षाओं के दौरान वाइवा एग्जाम देते हैं, वाइवा वो सी देते हैं, वो भी एक प्रकार का साक्षात्कार
है, इंटरव्यू होता है।
अब इंटरव्यू को जो हम लोग वाइवा के तौर पे जो प्रयोग में लाते हैं, तो उसमें भी जो आपका अध्यापक है वो आपके अंदर संप्रेषण की कुशलताओं को जानने समझने का प्रयास करता है कि हमारे बच्चे को संप्रेषण की कुशलताएं कितनी आती हैं, बोलना कितना से अच्छा आता है, अपनी बातों को रखने और कहने का कितना वो प्रयास कर पाता है एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत। तो निश्चित रूप से मैं आपसे एक बार अनुरोध करूंगा कि एक मास कम्युनिकेशन के शिक्षार्थी के तौर पर आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी कुशलता होनी चाहिए कि आप इंटरव्यू देना अच्छे से सीख जाएं। अगर आप इंटरव्यू देना अच्छे से सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से कक्षा 12 पर आप जो जनसंपर्क का ये अध्ययन कर रहे हैं वो आपके लिए सार्थक हो जाएगा और जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं NIOS के, वो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम मुक्त विद्यावाणी के भी हैं, उनको भी आप सुनते रहिए और देखते रहिए कि जिस संस्थान के लिए, जिस पद के लिए, जिस विषय के लिए आप वाइवा या साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, आपकी बोली भाषा में नरमियत होनी चाहिए, आपको पहले मिलते समय अभिवादन करना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। अपना परिचय बताना भी एक अच्छी कुशलताओं में से माना जाता है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि हाँ अपना अपना परिचय दें, तो आप एक बार तो लड़खड़ा जाएंगे कि मैं अपने परिचय में क्या बोलूं, तो आपको बोलना चाहिए कि मेरा नाम शीतल कुमारी है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, मैंने अभी हाल फिलहाल में NIOS की 12वीं की परीक्षाएं दी हैं और भविष्य में मेरी योजना है कि मैं BJMC करूँ। तो परिचय देने के समय भी आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और ये हिचक कैसे दूर होगी प्यारे शिक्षार्थियों, जब आप PR टूल्स का अच्छे से प्रयोग करेंगे, जनसंपर्क के उपकरणों का सही और सटीक प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और देखते हैं कि जो हमारा प्रिंट मीडिया है, जो मुद्रित माध्यम है, उसमें भी हम लोग कई सारे उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अब एक सबसे पहला उपकरण है फ्लायर। फ्लायर पे कई बार हम लोग एक नंबर का प्रश्न भी आपसे पूछते हैं बच्चों, कई कई बार फ्लायर बनाने के लिए भी हम लोग TMA में कहते हैं आपको। तो उस फ्लायर के बारे में हम लोग देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। तो आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज़पेपर के साथ में एक कागज़ का पन्ना आता है, उसमें कुछ लिखा होता है और आप देखते हैं कि उस जो उसमें जानकारी दी हुई होती है, वो बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो समसामयिक विषयों को लेकर के होती है। उसमें आपको किसी एक निश्चित संदेश के द्वारा किसी एक जगह पे जाने के लिए, कोई उत्पाद खरीदने के लिए, कोई काम करने के लिए, कहीं प्रतिभागिता देने के लिए आग्रह किया जाता है। तो इस प्रकार का जो ये आपका जो कागज़ का पन्ना जो समाचार पत्र के साथ आता है, जिसमें बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, इस पन्ने को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लायर, यानी कि हैंडबिल। तो हैंडबिल और फ्लायर की ये खास बात है कि वो आपको अखबार के साथ मिल जाएगा। और जैसे ही वो मिलता है तो इसका मतलब है आप समझ जाते हैं कि जनसंपर्क में प्रयुक्त सूचना के उपकरणों को सरलतम एवं साधारण रूप से प्रस्तुत करने का जो प्रतिनिधित्व करता है वो ये फ्लायर ही करता है। और हम ये भी समझ जाते हैं कि जनसंपर्क में जो प्रथम लिखित सामग्री का हम लोग प्रयोग करते हैं वो फ्लायर के माध्यम से कर पाते हैं। निश्चित रूप से जो भी बुलेटिन बोर्ड है वो बिना मुड़े हुए पन्ने होते हैं और डाक से भेजे जा सकते हैं या हाथों हाथ वितरित किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी आप बाज़ार गए होंगे तो बाज़ार में घुसते ही एक बच्चा वहाँ पे खड़ा होगा, कोई व्यक्ति खड़ा होगा, वो आपको पन्ना दे देगा, उस पर एक ऑफ़र लिखा होगा कि आपको फला सेवा या फला उत्पाद खरीदने पर 30% 20% का उसमें ऑफ़र है। तो इसका मतलब है उस हैंडबिल ने, उस फ्लायर ने इतनी क्षमता के साथ आपको कोई संदेश दिया है कि आप उस हैंडबिल पर लिखे हुए दुकान के पते का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। और निश्चित रूप से एक एकल संदेश को प्रस्तुत करने के लिए हैंडबिल या फ्लायर सबसे सशक्त माध्यम है। एक PR टूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी एक और विशेष बात है प्यारे शिक्षार्थियों कि एक समय विशेष के लिए ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि जिस लक्षित समूह के लिए उसको तैयार किया गया है उसमें उस विषय या उस संदेश के प्रति पूरी जागरूकता दी जा सके। और साथ ही साथ सूचना के माध्यम से जागरूकता को इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि वो हमेशा के लिए उस ग्राहक के मन में, उस आम जनता के मन में, उस प्रापक के मन में, उस रिसीवर के मन में रहे, जिससे कि एक सस्टेन्ड कम्युनिकेशन, जो स्थायी संचार है, उसकी बात हम लोग वहाँ पे कर पाएँ। अब आपकी सेल्फ लर्निंग मटेरियल में लिखा हुआ है प्यारे शिक्षार्थियों कि 38 शताब्दी पहले मेसोपोटामिया में बेबीलोनिया के लोग फ्लायर यानी कि पाषाण पटल पर खुदा हुआ एक जो पत्थर होता था, एक पत्थर की जो स्लेट होती थी, आपने कई सारी कार्टून फिल्मों में भी देखा होगा कि वो पत्थर की स्लेट पे कोई संदेश लिखते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो मेसोपोटामिया में जो बेबीलोनिया जगह थी वहाँ पर इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था फ्लायर के तौर पर, जिसमें ये कहा गया था कि आपको अगर खेती करनी है, कृषि करनी है, तो इस प्रकार के उपकरणों का, इस प्रकार के बीजों का प्रयोग करें जिससे कि कृषि में उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो आप ये देखें कि एक प्रकार से जन शिक्षा अभियान को बढ़ाने के लिए उस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया जो एक फ्लायर के तौर पे प्रयोग में लाया गया, जिसको कि आज हम कह सकते हैं कि वो PR टूल का एक अच्छा खासा उदाहरण है। तो अब देखिए कि जो PR टूल्स की जिसकी चर्चा हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के जनसंचार विषय 335 के अंतर्गत करते हैं, वो 38 शताब्दी पहले मेसोपोटामिया में किया जा चुका था। तो इतना पुराना है फ्लायर का प्रयोग। तो ये सब बातें जानने समझने का आप इस प्रकार से प्रयास कीजिएगा कि जब भी एक नंबर का प्रश्न आपके पास आए तो उनका फट से आप जवाब दे दीजिएगा। मान लीजिएगा आपसे पूछा जाए कि फ्लायर का प्रयोग पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ किया गया, तो आप तुरंत बोलिए मेसोपोटामिया के बेबिलोनिया के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। तो शिक्षार्थी ये तो बात हो गई हमारी फ्रायर की। बच्चों हम लोग ब्रोशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले हम लोग ब्रोशर को परिभाषित कर लेते हैं। अगर हम लोग ब्रोशर की परिभाषा की बात करें तो जो आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में भी लिखा हुआ है कि सूचना का एक मोड़ा हुआ पन्ना जिसे एक किताब की तरह पढ़ा जा सकता है। मतलब कई बार आप देखते हैं ना कि एक एक थोड़े से कड़े हुए कागज़ पे, मतलब थोड़े से कड़े पेपर पे एक संदेश लिखा होता है जिसको दो तीन बार मोड़ा जाता है। जैसे कि आप कभी कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए किसी संस्थान में जाते हैं या किसी बड़े शोरूम में जाते हैं कोई उत्पाद खरीदने के लिए, तो वो उसकी जानकारी आपको देता है। तो एक ऐसा मोड़ा हुआ पन्ना जिसे किताब के तौर पे पढ़ा जा सकता हो और दीर्घकालिक अवधि तक वो प्रासंगिक भी रहे। मान लीजिए हम लोग किसी टेलीविज़न के बारे में जाने या किसी कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए किसी शोरूम पे गए हैं, तो आपने उसको देखा, उसको आपको अच्छा लगा, फिर आपने कहा कि हम इसको लेने के लिए आपके पास आएंगे। तो अब उसका काम है सेल्समैन का कि वो आपको सस्टेंड रखे, आपको वो बेचने का पूरा प्रयास करता। तो वो कहता है कि सर आप ये इसकी जानकारी ले भी जा सकते हैं, वो आपको वो मुड़े हुए पन्ने दे देता है, वो ब्रोशर दे देता है। तो उस ब्रोशर को जब अपने साथ ले जाते हैं तो उस ब्रोशर में सारी जानकारियाँ उस कंप्यूटर की रहती हैं आपके पास में। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी आप उस उत्पाद को ख़रीदने का मन बनाते हैं तो उस ब्रोशर के माध्यम से सारी जानकारियां प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब संप्रेषित संदेश को श्रोताओं के मस्तिष्क में दीर्घ काल तक रखना होता है, मतलब लंबे समय के लिए रखना होता है, तो फ्लायर जैसे सूचनाओं को हम लोग एक पर्याप्त साधन के तौर पर नहीं प्रयोग में कर सकते हैं, क्योंकि फ्लायर का एक छोटी सी अवधि होती है कि वो आपके हाथ में आया, आपने उसको पढ़ा, उसको आपने इधर उधर कर दिया, फेंक दिया। लेकिन जो ब्रोशर होता है, ब्रोशर को मुद्रण के मामले में हम देखते हैं कि एक अच्छे कागज़ पर तैयार किया जाता है, अधिक पृष्ठों का होता है और उसको इस प्रकार से निर्मित किया जाता है कि वो पढ़ने में भी अच्छा लगे, उस पर चित्रों को भी अच्छे से रखा जाता है, उसकी प्रिंटिंग अच्छी होती है और तथा आकार के आधार पर भी इसको हम लोग कई भागों में बांटते हैं कि ये लीफलेट है या फोल्डर है या पैम्फलेट है। तो कितने अलग अलग तरीके के ब्रोशर होते हैं, तो इनको भी हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। अब आप मान लीजिए कि कहीं जाते हैं कि एक ट्रैवल एजेंट से मिलते हैं और ट्रैवल एजेंट आपको कोई ब्रोशर देता है कि आप यहाँ से हरिद्वार तक जाएंगे तो आपको ये पैकेज मिलेगा, आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे और आपको खाने के लिए साधन मिलेगा। आप हरिद्वार के पैकेज में अगर ऋषिकेश को भी ऐड कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो वो ब्रोशर बना के रखता है क्योंकि उस ट्रैवल एजेंट का एक विशेषता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वो हमेशा उसी रूट पर अपनी सेवाएँ दे रहा है। तो वो स्थाई जानकारियों को एक ब्रोशर के रूप में प्रस्तुत करता है और अपने संभावित ग्राहकों को वो देते रहता है कि जिससे वो लोग उससे जुड़े और जानकारियाँ प्राप्त करते हुए। लेकिन इसी के साथ साथ एक और शब्द हम लोग सुनते हैं, न्यूज़लेटर। अब न्यूज़लेटर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कभी आपके पिताजी कार्यालय से आते हैं तो कभी कभी उनके हाथ में एक उन्हीं के संस्थान का एक जानकारी से भरा हुआ प्रपत्र होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूज़लेटर होता है वो नियमित अवधि पे पढ़ने के लिए एक मुद्रित प्रकाशन है। यस, और न्यूज़लेटर यह भी है कि सूचना जानने को जो इच्छुक विशेष श्रोताओं हैं, श्रोतागण हैं, उनके लिए यह वितरित किया जाता है। साथ ही साथ न्यूज़लेटर अपने पब्लिक यानी श्रोताओं के लिए प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होकर प्रकाशित किया जाता है। और एक बात इसकी और अच्छी है कि न्यूज़लेटर की जो विषय वस्तु होती है प्यारे शिक्षार्थियों, उसके प्रस्तुतीकरण पर कम औपचारिक तथा पत्र लेखन जैसी शैली का प्रयोग किया जाता है कि जिससे उसको समझने में और आसानी हो जाए। उदाहरण के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जब कभी एक कॉलेज के द्वारा प्रकाशित न्यूज़लेटर में एक विशेष अवधि में संचालित गतिविधियों को, उत्सवों को या जितने भी काम किए गए हैं अच्छे, उनको प्रकाशित किया जाता है, या वरिष्ठ अध्यापकों की जो रिटायरमेंट है उनका वर्णन किया जाता है, या नए नए फीचर जो ऐड किए गए हैं उनको मुद्रित किया जाता है, तो उस छपने वाले प्रपत्र को हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे न्यूज़लेटर। तो एक ऐसा न्यूज़लेटर होता है जो आपको पूरी पूरी जानकारियां देने के लिए अपने आप में सक्षम होता है। लेकिन न्यूज़लेटर का एक निश्चित श्रोता होता है, एक निश्चित टारगेट ऑडियंस होता है, जो कि एक कॉलेज, एक विद्यालय, एक संस्थान हो सकता है। लेकिन जब हम लोग प्रेस विज्ञप्ति की बात करते हैं प्यारे शिक्षार्थियों, तो प्रेस विज्ञप्ति के बारे में हम लोग कहते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति जनसंपर्क कर्मी द्वारा जन माध्यमों के द्वारा उद्घोषित करने के लिए प्रयुक्त की गई एक ऐसी लिखित संप्रेषण सामग्री होती है जो कि डाक द्वारा, फैक्स द्वारा या ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। इसका मतलब है कि एक बड़े जनसमूह तक इस प्रकार के जन माध्यम का प्रयोग करके इसको हम लोग भेज सकते हैं। अब यह है कि प्रेस विज्ञप्ति कैसे तैयार होती है, तो इसका भी हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले लेना चाहिए। तो प्रेस विज्ञप्ति का जो टेक्स्ट है, जो उसका कंटेंट है, जो वो बहुत ही आकर्षक शीर्षक के साथ एक समाचार के रूप में लिखा जाता है, जिससे कि माध्यमों के लिए यह शीघ्र स्वीकार हो तथा समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविज़न द्वारा संदेश तत्काल प्रसारित किए जा सकें। तो आपने कई कई बार देखा होगा कि बहुत से जो संस्थान हैं वो अपने संस्थान की प्रेस रिलीज को भी बहुत सारे टेलीविज़न चैनलों पर भी देते हैं समाचार के लिए, बहुत सारे एफएम चैनलों पर भी देते हैं। सीधे सीधे संपादक को पत्र लिख करके वो प्रेस रिलीज के माध्यम से अपने संस्थान की बात को आम जनमानस में पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनकी संस्था के जो निहित उद्देश्य हैं उनको भी जनमानस में बढ़ाया जा सके, दिखाया जा सके, और साथ ही साथ जो अच्छा कौशल किसी संस्थान के द्वारा किया गया है उसके द्वारा जन जन को, विशाल जन समूह को और अधिक जानकारी दी जा सके, कि जिससे उनका जुड़ाव और अधिक किया जा सके उस संस्थान के प्रति। तो हम लोग यहाँ पे ये जान गए हैं कि मान लीजिए कोई आपके विद्यालय में, कोई आपके आसपास में कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है प्यारे शिक्षार्थियों, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उससे संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति आप तैयार करें और उसका अध्ययन करें। और तो और आपको कई बार हम लोग वर्कशीट भी देते हैं, TMA में भी ऐसी गतिविधियां कहते हैं कि आपके क्षेत्र में आयोजित किसी उत्सव पर किसी सांस्कृतिक आयोजन से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार करें। तो इस प्रेस विज्ञप्ति को तैयार करने के दौरान क्या होगा कि आपकी जो लेखन शैली है प्यारे शिक्षार्थियों, वो लेखन शैली भी बढ़ जाएगी, आप शब्दों को जान पाएंगे, आप वाक्य विन्यास के बारे में, वाक्य संरचना के बारे में जान पाएंगे, आपको संपादन की कला आ जाएगी, कहाँ पर कितना सटीक रूप से क्या लिखा जाना है वो आ जाएगा, किस घटना के क्रम पे कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा उसका भी प्रयोग करना आप जान जाएंगे। जैसे हम पीला रंग बोले या पीत वर्ण बोले, तो देखिए दोनों में अंतर है। पीला रंग बोलते हैं तो हमको हमेशा ड्राइंग की याद आती है, पीत वर्ण बोलेंगे तो हमको ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की याद आएगी कि हमारे समक्ष पंडित जी बैठे हैं, सरस्वती वंदना हो रही है, पूजन हो रहा है, इसके बाद टीका होगा और आरती होगी। तो शब्दों का सही और सटीक प्रयोग भी जनसंपर्क के उपकरण के तौर पर हमको प्रयोग में आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो प्यारे शिक्षार्थियों, आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपनी जो वोकैबुलरी है, अपनी जो शब्दों की ज्ञान है, वो उसको और बढ़ाइए, विभिन्न प्रकार की डिक्शनरियों को पढ़ते रहिए। और सबसे जो अच्छा उपकरण है वो है कि रोजाना आपके घर पे पहुंचने वाले दैनिक समाचार पत्र को आप अगर पढ़ते रहेंगे तो मात्र 6 महीने साल भर में आप उन शब्दों को भी जान जाएंगे जो शब्द आपने पहले कभी नहीं पढ़े या सुने थे। कई के बार शिक्षार्थी हमसे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि इस शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता है। अब आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपकी बड़ी बहन है, तो आप प्रयास ये कीजिए कि आपको कोई शब्द आ गया है और उसका अर्थ आपको नहीं पता, तो आप अपनी बहन से पूछ सकते हैं, अपनी मम्मी से, अपने पापा से पूछ सकते हैं, अपने और वरिष्ठ जन हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, आपके और उनके बीच में संप्रेषण भी होगा, मतलब संचार भी होगा, और आप उस शब्द का अर्थ भी जान जाएंगे। तो शिक्षार्थी, जब हम लोग इतने शब्दों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो मुद्रित माध्यम है, मुद्रित माध्यमों में हम लोग जो समाचार पत्र या पत्रिकाओं की बात करते हैं उनको भी जनसंपर्क के उपकरण के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। आपने अनेक विज्ञापन देखे होंगे, उनमें शब्द देखे होंगे, चित्र देखे होंगे, तो निश्चित रूप से ये जो विज्ञापन है मुद्रित माध्यम में, इनको भी हम लोग जनसंपर्क के उपकरणों में प्रयोग में लाते हैं और ये एक अच्छा साधन है जनसंपर्क के लिए। तो निश्चित रूप से जो भी ब्रोशर, जो भी पैम्फलेट, जो भी न्यूज़लेटर आप लोग बनाना सीखेंगे वो एक मुद्रित माध्यम का ही प्रकार होगा, जो PR टूल्स का, जनसंपर्क के उपकरणों का, जो कि एक प्रभावी ढंग से अपने टारगेट ऑडियंस पर प्रभाव डालता है। तो तो साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो समाचार पत्र का विज्ञापन है और पत्रिका का विज्ञापन है, उसमें भी आपको कई बार अंतर दिखता होगा कि आपको दिखता होगा कि समाचार पत्र के जो विज्ञापन है वो ब्लैक एंड व्हाइट यानी श्वेत श्याम में होते हैं, पत्रिकाओं के जो विज्ञापन होते हैं मोस्टली कलर्ड में होते हैं। समाचार पत्र का ये है कि आप फुल पेज का भी दे सकते हैं, आप छोटा सा भी वो दे सकते हैं, लेकिन पत्रिका का एक निश्चित साइज है कि फुल पेज से ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और अधिकतर हम देखते हैं कि संपूर्ण पेज पर ही कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है। और समाचार पत्रों के संदर्भ में हम लोग ये भी जानते हैं कि एक ही पृष्ठ पर एक से अधिक विज्ञापन हो सकते हैं, लेकिन पत्रिकाओं के लिए कहा जाता है कि सामान्यतः एक पृष्ठ पर एक ही विज्ञापन हो तो अच्छा है, क्योंकि उससे हम लोग अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने लक्षित समूह को संबोधित कर सकते हैं, जिसके आगे हम लोग बात बढ़ाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो आउटडोर मीडियम है वो क्या करते हैं। तो आपने कई कई बार देखा होगा कि आपके मोहल्ले में, आपके आसपास कभी पल्स पोलियो का वो बड़ा सा गुब्बारा एक लगा होगा। आजकल हम लोग उस गुब्बारे का प्रयोग स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी कर रहे हैं, उस पर लिखा होगा कि अपने आसपास को साफ रखें। तो वो जो बड़ा सा बलून है येलो कलर का, वो क्या करता है? वो एक आउटडोर माध्यम का काम करता है, एक मीडियम का काम करता है, जिसको कि रात में भी हम लोग देख पाते हैं। तो वो जो मीडियम है वो भी जनसंपर्क का एक उपकरण है, और अनायास ही हम राह चलते उस गुब्बारे की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, उस पर लिखे हुए संदेश को पढ़ लेते हैं। तो प्यारे शिक्षार्थियों, मुझे लगता है कि आज बहुत ही सार्थक चर्चा की गई है इस कार्यक्रम के दौरान। आपने जनसंपर्क के उपकरणों को जानने समझने का अच्छा प्रयास किया होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।